नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, पैट फ्लिन की लेट गो, हाउ टू ट्रांसफॉर्म मोमेंट्स ऑफ पैनिक इनटू अ लाइफ ऑफ प्रॉफिट्स एंड पर्पज, एक संस्मरणात्मक स्व विकास और उद्यमिता पुस्तक है। इसका केंद्र किसी तैयार कारोबारी सूत्र की सूची नहीं, बल्कि अनिश्चितता के बीच पुरानी पहचान, भय और नियंत्रण की आदत को छोड़ने की प्रक्रिया है। फ्लिन अपने आर्किटेक्चर के सपनों वाले काम से आर्थिक मंदी के दौर में निकाले जाने को शुरुआती मोड़ के रूप में रखते हैं। उस झटके के बाद ऑनलाइन उद्यमिता में उनका प्रवेश, सीखने की गलतियां और क्रमिक प्रगति पुस्तक का आधार बनते हैं। विस्तारित संस्करण में मूल कथा के बाद के वर्षों के अनुभव और 8 नए अध्याय जोड़े गए हैं। इनमें हर अवसर को हाँ कहने की प्रवृत्ति, व्यवसाय के हर हिस्से को स्वयं नियंत्रित करने की चाह और बदलाव स्वीकार करने की कठिनाई जैसे मुद्दे आते हैं। पुस्तक का उद्देश्य घबराहट या करियर अवरोध को हल्का बताना नहीं है। यह दिखाती है कि ऐसे क्षणों में व्यावहारिक चुनाव, प्रयोग और जिम्मेदारी से नई दिशा बनाई जा सकती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, नौकरी छूटने को अंत नहीं, निर्णय लेने की नई शुरुआत मानना। पुस्तक का आरंभिक और सबसे ठोस विचार यह है कि अचानक हुई पेशेवर हानि व्यक्ति की पहचान को भी हिला देती है। फ्लिन के लिए आर्किटेक्चर की नौकरी केवल आय का स्रोत नहीं थी, बल्कि लंबे समय से चाही गई भूमिका थी। इसलिए नौकरी से निकाला जाना स्वाभाविक रूप से भय, भ्रम और भविष्य के प्रति असुरक्षा लाता है। पुस्तक इस अनुभव को किसी जादुई अवसर की तरह पेश करने के बजाय पहले उसके भावनात्मक दबाव को स्वीकार करती है। फिर यह प्रश्न उठाती है कि जब पुराना रास्ता बंद हो जाए तो व्यक्ति अपनी क्षमता, उपलब्ध जानकारी और वास्तविक विकल्पों को कैसे देखे। फ्लिन की कथा में नया रास्ता ऑनलाइन काम और उद्यमिता की ओर जाता है, लेकिन पाठ का व्यापक अर्थ हर पाठक के लिए एक जैसा व्यवसाय शुरू करना नहीं है। मुख्य बात यह है कि बाहरी संस्था द्वारा दी गई पहचान पर पूरी तरह निर्भर रहने की सीमा समझी जाए। संकट के बाद निष्क्रिय प्रतीक्षा, केवल दुख दोहराने या बिना योजना के जोखिम लेने के बजाय छोटा अगला कदम चुनना उपयोगी है। इस दृष्टि में घबराहट निर्णय का शत्रु नहीं, एक संकेत है कि पुरानी निश्चितताएं समाप्त हो चुकी हैं। पुस्तक का व्यावहारिक मूल्य इसी बदलाव में है। व्यक्ति पहले स्थिति को स्वीकार करता है, फिर अपनी दिशा के लिए जिम्मेदारी लेने लगता है। दूसरा, लेट गो का अर्थ भय मिटाना नहीं, सीमित करने वाली धारणाओं से अलग होना। फ्लिन के यहाँ लेट गो का अर्थ लापरवाही से सब कुछ छोड़ देना नहीं है। यह उन मानसिक पकड़ों को पहचानना है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इनमें यह धारणा शामिल हो सकती है कि करियर केवल एक तय पद पर ही सुरक्षित है, कि नया काम शुरू करने से पहले पूर्ण तैयारी चाहिए, या कि असफलता सार्वजनिक रूप से शर्मनाक है। ऐसी धारणाएं अक्सर निर्णय को टालती हैं। पुस्तक का तर्क है कि विकास के लिए व्यक्ति को उस कल्पित रूप को भी छोड़ना पड़ सकता है कि उसे कौन होना चाहिए। यह विचार विशेष रूप से इसलिए उपयोगी है क्योंकि भय के साथ बहस केवल तर्क से समाप्त नहीं होती। फ्लिन की यात्रा में आगे बढ़ना छोटे प्रयोगों, सीखने और काम को सार्वजनिक रूप से साझा करने से जुड़ा है। इस तरह आत्मविश्वास पहले से मौजूद योग्यता नहीं रहता, बल्कि कार्रवाई के परिणाम स्वरूप बनता है। पुस्तक पाठक को यह नहीं बताती कि हर असुविधाजनक भावना खतरे के बिना होती है, बल्कि वह यह भेद सुझाती है कि कौन सा डर वास्तविक जोखिम के प्रति सावधानी है और कौन सा डर पुराने ढांचे से चिपके रहने की आदत है। इस अंतर को समझना करियर बदलने, नई परियोजना शुरू करने और अपनी प्राथमिकताएं तय करने में उपयोगी हो सकता है। लेट गो इसलिए निष्क्रिय समर्पण नहीं, सोच और व्यवहार में चयनात्मक परिवर्तन है। तीसरा, हर अवसर को हाँ कहने की आदत से निकलकर प्राथमिकताएं तय करना। विस्तारित संस्करण में फ्लिन उस चुनौती पर लौटते हैं जो शुरुआती उद्यमियों और सफल होते स्वतंत्र पेशेवरों दोनों के सामने आती है, हर नए अवसर को स्वीकार करने की इच्छा। शुरुआत में हाँ कहना उपयोगी लग सकता है क्योंकि इससे सीखने, आय या पहचान का अवसर मिलता है, लेकिन समय के साथ यही आदत ध्यान को बिखेरती है, काम की गुणवत्ता घटाती है और थकान बढ़ाती है। पुस्तक इस समस्या को केवल समय प्रबंधन की कमी नहीं मानती, इसके पीछे अवसर छूट जाने का डर, दूसरों को निराश करने की चिंता और निरंतर व्यस्त दिखने की इच्छा हो सकती है। इस प्रसंग का मूल सबक है कि किसी काम को चुनना कई अन्य कामों को जानबूझकर न चुनना भी है। पाठक के लिए उपयोगी प्रश्न यह हो सकता है कि प्रस्तावित कार्य उसके दीर्घकालिक उद्देश्य, उपलब्ध ऊर्जा और मुख्य जिम्मेदारियों से मेल खाता है या नहीं। यदि उत्तर अस्पष्ट है तो तत्काल हाँ कहना आवश्यक नहीं। फ्लिन के अनुभव से यह भी स्पष्ट होता है कि सीमाएं केवल निजी आराम के लिए नहीं, बल्कि भरोसेमंद काम और स्थायी व्यवसाय के लिए जरूरी है। प्राथमिकता का अर्थ महत्वाकांक्षा घटाना नहीं है, इसका अर्थ है सीमित संसाधनों को उस दिशा में लगाना जहां उनका प्रभाव अधिक हो। इस विषय के जरिए पुस्तक उद्यमिता को लगातार विस्तार की दौड़ के बजाय विवेकपूर्ण चयन की प्रक्रिया के रूप में रखती है। चौथा, सब कुछ स्वयं नियंत्रित करने के बजाय सीईओ जैसी जिम्मेदारी विकसित करना, पुस्तक का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक पक्ष नियंत्रण छोड़ने से जुड़ा है। स्वतंत्र ऑनलाइन काम शुरू करने वाला व्यक्ति अक्सर सामग्री, ग्राहक सेवा, तकनीक, प्रचार और प्रशासन सब कुछ अपने हाथ में रखता है। आरंभ में यह आवश्यक भी हो सकता है क्योंकि संसाधन कम होते हैं और संस्थापक को काम की बारीकियां सीखनी होती हैं। किंतु फ्लिन अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि हर कार्य पर व्यक्तिगत नियंत्रण बनाए रखना आगे चलकर रुकावट बन सकता है। व्यक्ति निर्णयों का केंद्र तो बना रहता है, पर संचालन का बोझ उसके समय और ऊर्जा को बांध देता है। यहाँ लेट गो का मतलब जिम्मेदारी से बचना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का स्तर बदलना है। काम स्वयं करने के बजाय यह स्पष्ट करना कि कौन सा काम किस मानक पर होना चाहिए, किसे सौंपा जा सकता है और किन निर्णयों पर संस्थापक का ध्यान जरूरी है। इस बदलाव को सीईओ की मानसिकता से जोड़ा जा सकता है, जिसमें व्यक्ति अपने काम को केवल व्यक्तिगत मेहनत नहीं, एक व्यवस्थित व्यवसाय की तरह देखता है। इस विचार की सीमा भी समझना जरूरी है। हर पाठक को तुरंत टीम बनाने या कार्य सौंपने की स्थिति नहीं होगी। फिर भी प्रक्रिया दर्ज करना, दोहराए जाने वाले काम पहचानना और नियंत्रण की असली जरूरत जांचना छोटे स्तर पर भी संभव है। पुस्तक इस प्रकार स्वायत्तता और सहयोग के बीच संतुलन पर विचार कराती है। अंत में, बदलाव, असफलता और पारदर्शिता को सीखने की सार्वजनिक प्रक्रिया बनाना। फ्लिन की सार्वजनिक पहचान का एक पक्ष पारदर्शिता है और पुस्तक में यह केवल निजी शैली नहीं बल्कि सीखने की विधि के रूप में उभरती है। उद्यमिता में योजना बदल सकती है, शुरुआती प्रयास कमजोर हो सकते हैं और कौशल विकसित होने में समय लगता है। यदि व्यक्ति अपनी छवि को हमेशा सक्षम और निश्चित दिखाने में ही ऊर्जा लगाए तो वह सुधार के लिए जरूरी प्रतिक्रिया से दूर हो सकता है। फ्लिन अपने संघर्षों और गलतियों को छिपाने के बजाय कथा का हिस्सा बनाते हैं। इससे पुस्तक में उपलब्धि का चित्र अधिक विश्वसनीय बनता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर निजी बात या हर अधूरा विचार सार्वजनिक कर देना चाहिए। अधिक उपयोगी सिद्धांत यह है कि सीखने की प्रक्रिया में ईमानदारी रखी जाए, दावों को परिणामों से आगे न बढ़ाया जाए और गलती को पहचान कर अगला प्रयोग बदला जाए। बदलाव के प्रति अनिच्छा अक्सर इसलिए रहती है कि पुरानी रणनीति में बहुत समय लग चुका होता है। पुस्तक संकेत देती है कि पहले किया गया निवेश भविष्य की दिशा का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए। जब नई जानकारी बताती है कि तरीका काम नहीं कर रहा तो संशोधन करना पराजय नहीं है। इस विषय में संस्मरण और व्यावसायिक शिक्षा साथ आते हैं। पाठक को तैयार उत्तर कम मिलते हैं, लेकिन अनिश्चित परिस्थितियों में अधिक खुली, ईमानदार और अनुकूलनीय कार्यप्रणाली का मॉडल मिलता है। निष्कर्ष में, लेट गो उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो नौकरी छूटने, करियर में ठहराव या अपने काम की दिशा बदलने जैसी स्थिति में है। यह विशेष रूप से नए ऑनलाइन उद्यमियों, स्वतंत्र पेशेवरों और उन लोगों के काम आ सकती है जिन्हें अवसरों की अधिकता, नियंत्रण की आदत या बदलाव का डर उलझा रहा हो। वजह, पाठक को यहाँ विस्तृत बाजारीकरण की तकनीकें, आय बढ़ाने के निश्चित चरण या हर परिस्थिति के लिए लागू कारोबारी योजना नहीं मिलती। इसकी व्यावहारिक उपयोगिता मुख्यतः निर्णय की गुणवत्ता सुधारने में है, जैसे यह पहचानना कि किस भय को सुनना है, किस अपेक्षा को छोड़ना है, कहाँ सीमा बनानी है और कब सहायता या बदलाव स्वीकार करना है। इसी कारण यह पुस्तक सामान्य उद्यमिता पुस्तकों से अलग स्थान रखती है। कई पुस्तकें सफल व्यवसाय की रणनीतियों को केंद्र में रखती हैं, जबकि फ्लिन पहले उस व्यक्तिगत बदलाव पर ध्यान देते हैं जिसके बिना रणनीति लागू करना कठिन हो सकता है। आर्किटेक्चर की नौकरी से ऑनलाइन उद्यमिता तक की उनकी अपनी यात्रा विचारों को ठोस संदर्भ देती है। विस्तारित संस्करण का महत्व यह है कि यह केवल शुरुआती संकट पर नहीं रुकता, बल्कि आगे की सफलता के साथ आने वाली नई समस्याओं, जैसे हर काम को स्वीकार करना और सब कुछ नियंत्रित करना, पर भी विचार करता है। इसकी सीमाएं भी स्पष्ट हैं। यह व्यक्तिगत अनुभव आधारित पुस्तक है, न कि शोध आधारित मनोविज्ञान ग्रंथ। फिर भी ईमानदार संस्मरण, व्यावसायिक आत्मपरीक्षण और परिवर्तन पर केंद्रित सलाह का संयोजन इसे उन पाठकों के लिए उपयोगी बनाता है जो अपनी अगली दिशा अधिक सजगता से चुनना चाहते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं पैट फ्लिन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।